न्यायियों अध्याय 6। तब इसराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा, और मिद्यानी इसराइलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इसराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलाओं को अपने निवास बना लिए, और जब जब इसराइली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे, और इसराइलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गदा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे, और मिद्यानियों के कारण इसराइली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। जब इसराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इसराइलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकालकर उनका देश तुम्हें दे दिया, और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। न्यायियों 6:1-10। फिर से परमेश्वर का त्याग। उनके मन परमेश्वर से दूर हो गए थे। इस बार परमेश्वर ने उन पर मिद्यानियों और अमालेकियों को प्रबल किया। गाजा भूमध्य सागर के सहारे दूरस्थ दक्षिण भूभाग है। गाजा तक पहुंचने में वे पूर्व से आकर संपूर्ण प्रदेश से होकर जाते थे और उनकी फसलों को लूट लेते थे, गेहूं जौ आदि। अगले साल फिर वही लूटपाट। ये हमलावर असंख्य होते थे। वे इन लोगों की संपूर्ण भोजन सामग्री लूटते थे। अतः इसराइलियों ने फिर यहोवा को पुकारा, और परमेश्वर ने इस बार एक नबी को भेजा, जिसने उनकी पीड़ाओं के कारण बताया कि उन्होंने मिस्र से उन्हें मुक्ति दिलाने वाले यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाकरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। न्यायियों 6:11। यहां गिदोन मिद्यानियों से छिपकर अपना गेहूं गा रहा था कि वे यदि उसे देख लेंगे तो उसका गेहूं लूट लेंगे। उसी दाकरस की वाटिका में उसने स्वर्गदूत को देखा। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इस शक्ति पर जा और तू इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। न्यायियों 6:12-15। परमेश्वर को अपनी बुलाहट के प्रति मनुष्यों से प्रतिक्रिया पाने में परेशानी होती है। परमेश्वर मुझे बुलाता है और मुझे अपनी इच्छा समझा देता है, परंतु तब मैं कहता हूं, प्रभु, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और कहा कि वो फिरौन के सामने जाए, तो मूसा ने कहा कि वो अच्छी तरह बोल नहीं पाता है। परमेश्वर ने यरमिया को चुना, तो उसने कहा कि उसकी आयु बहुत कम है, कोई भी उसका कहा नहीं मानेगा। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि वो जाकर इसराइल को मुक्ति दिलाए, उसने कहा, अपनी डायरी ठीक से देख प्रभु, तूने गलत व्यक्ति को पकड़ा है, क्योंकि मैं तो अपने पिता के कुटुंब में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। न्यायियों 6:16। परमेश्वर की सफल सेवक का रहस्य, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, मैं तेरे संग रहूंगा। हम कई बार परमेश्वर के सेवा कार्यों को करते करते असफल हो जाते हैं, तब परमेश्वर आकर वही काम करने को कहता है, तो हम उसे उत्तर देते हैं, प्रभु, मैंने तो कई बार करके देखा है, यहां सफलता नहीं मिलेगी। परमेश्वर ने गिदोन को सफलता का रहस्य बता दिया, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर को साथ लेकर काम करने का अभ्यास कीजिए। चेले पूरी रात मछली पकड़ते रहे, परंतु कुछ हाथ न लगा। सुबह यीशु ने उनसे भोजन मांगा, उन्होंने कहा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं था। इस पर यीशु ने कहा, अपने जाल दूसरी ओर डालो। जाल में इतनी अधिक मछलियां आ गई कि नाव डूबने लगी। प्रभु सहित और प्रभु रहित सेवा में यही अंतर है। सफलता का रहस्य, मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर यदि साथ हो तो परिणाम स्वरूप बहुत आशीषें मिलती हैं। मुझे समझ लेना है कि मुझे प्रभु की भागीदारी की सख्त आवश्यकता है। मैं अपने आप में सक्षम नहीं हूं। मैं उसके लिए जो भी करना चाहता हूं, उसमें उसकी सहभागिता की निश्चय ही आवश्यकता है। मैं इसराइल को क्यों कर छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं तेरे संग रहूंगा। सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। न्यायियों 6:16-17। उसने सोचा कि वो स्वप्न देख रहा है, सुनिश्चित करने के लिए उसने चिन्ह मांगा। मेरे विचार में ऐसी शंका में कोई बुराई नहीं। परमेश्वर साफ साफ कहना और सुनना पसंद करता है, कुछ लोगों के संदेह निवारण की खोज नहीं, विवाद का अवसर खोजते हैं, परंतु कुछ लोग वास्तव में समझना बूझना चाहते हैं। हमें ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि आप सच्चे दिल से शक प्रकट करते हैं तो परमेश्वर निश्चय ही आपका शक दूर करेगा। मेरे विचार में ये सुनिश्चित करना बुद्धिमानी है कि परमेश्वर ही है जो मुझसे बात कर रहा है। इस क्षेत्र में अनेक लोग धोखा खा चुके हैं, क्योंकि उनके मन में भावना उठी या उन्होंने कोई अस्पष्ट दर्शन देखा। वे बड़ी परेशानियों में पड़ गए क्योंकि उन्होंने भली भांति नहीं जाना कि वो परमेश्वर ही था। परमेश्वर की बुलाहट को निश्चित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, आंख बंद करके कूदना पड़े। गिदोन ये सुनिश्चित करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। गिदोन ने कहा, मेरे आने तक रुक, मैं तेरी सेवा करूंगा। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक अपा मैदा की अखमीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अखमीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से अंतर ध्यान हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वो यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, शालोम, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वो आज के दिन तक अबीएजरियों के ओपरा में बनी है। न्यायियों 6:19-24 पर ये बड़ी ही विचित्र बात है कि वो युद्ध करने जा रहा है कि इसराइलियों को मिद्यानियों के उत्पीड़न से मुक्त कराए। वो संघर्ष की मनोदशा में है, उसका चित्त अशांत है। वो उस स्थान का नाम यहोवा शालोम रखता है, जिसका अर्थ है यहोवा हमारी शांति है। जी हां, वो युद्ध से परे परमेश्वर की शांति को देख रहा है, जिसकी प्रतिज्ञा अभी परमेश्वर ने दी थी। हम भी अपने जीवन के संघर्षों के परे परमेश्वर की शांति का विश्वास रख सकते हैं और परमेश्वर हमें अपने संघर्षों से शांति प्रदान करेगा। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपना पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। न्यायियों 6:25-26 पर गिदोन का पिता मूर्ति पूजक था। उसके पास उपासना का अपना ही वृक्ष कुंज था। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि उसकी वेदी और उपासना स्थल को गिरा दे और वहां यहोवा की वेदी बनाकर उसी लकड़ी से होम बलि में बैल चढ़ा। उसने बाल और अशेरा की मूर्तियां तोड़ डाली। बिहान को नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, ये काम किसने किया, और पूछताछ और ढूंढ डांट करके वे कहने लगे कि ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्य ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वो मार डाला जाएगा। बिहान तक ठहरे रहो, तब तक यदि वो परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उसे वो आप ही अपना वाद विवाद करे। न्यायियों 6:28-31 पर। अब देखिए, वहां के लोग गिदोन को घात करने के लिए उसके पिता योआश को पुकार रहे हैं कि वो उसे बाहर निकाले। योआश ने कहा कि यदि वे वास्तव में देवी देवता है तो उन्हें उनकी सुरक्षा एवं सहयोग की क्या आवश्यकता है, वे स्वयं ही अपना बदला ले लेंगे, वे उन्हें बचाने आए, इसकी आवश्यकता नहीं। हम भी कई बार परमेश्वर का पक्ष करने के लिए बाध्य होते हैं कि उसके अस्तित्व को सिद्ध करें, परंतु सत्य तो ये है कि हमारा परमेश्वर अपनी रक्षा के लिए सामर्थी है, उसे मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। इस कारण उन्होंने गिदोन का नाम यरुब बाल रखा, अर्थात बाल अपना विवाद करे। इसके बाद सब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी खटे हुए और पार आकर इज़राइल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूंका। तब अबीएजरी उसकी सुनने के लिए खटे हुए, फिर उसने कुल मनुष्य के पास अपने दूत भेजे और वे भी उसके समीप इकट्ठे हुए, और उसने आशेर, जबलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब वे भी उससे मिलने को चले आए। न्यायियों 6:33-35 पर। ये सब उस देश के उत्तरी क्षेत्र में बसने वाले गोत्र हैं। वे मनुष्य के दक्षिणी भाग में वास कर रहे थे, एप्रेम, बिन्यामीन, यहूदा और शिमोन। वे इस युद्ध में शामिल नहीं किए गए थे और ना ही दूसरी ओर के गोत्र, केवल मगिदो और यज्रेल के आसपास के गोत्रों ने युद्ध में भाग लिया था। यज्रेल वास्तव में मगिदो की घाटी को ही कहते हैं। इसी स्थान पर मिद्यानियों ने सेना ठहराई थी, 1,32,000 सैनिक। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इसराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। न्यायियों 6:36 पर। यहां गिदोन एक बार फिर निश्चित करना चाहता है कि उसे प्राप्त संदेश परमेश्वर की ओर से ही था। अतः उसने कहा कि वो भेड़ का ऊन मैदान में रखेगा और यदि ओस पूरा मैदान छोड़कर केवल ऊन पर गिरेगी तो वो जान लेगा कि संदेश परमेश्वर की ओर से ही था। उसने अपना दिमाग लड़ाया कि हो सकता है ऊन नमी खींचता हो। अतः उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, परंतु इस बार ओस पूरे मैदान पर गिरे और ऊन सूखा रह जाए। जब उसने सुबह देखा तो पूरे मैदान पर ओस थी और ऊन सूखा था। उसने जान लिया कि निश्चय ही वो संदेश परमेश्वर की ओर से था। आज अनेक लोग परमेश्वर के सामने ऐसी शर्तें रख देते हैं, प्रभु यदि मेरे पास ठीक 10 बजे फोन आएगा तो मैं जान लूंगा कि ये तेरी ओर से है। हम अपने मन में उठे विचारों को परखने के लिए परमेश्वर के सामने शर्तें रखते हैं। परमेश्वर की संतान होने के कारण हमें परमेश्वर की इच्छा को पक्का जानने के लिए शर्त रखना चाहिए या नहीं, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, परंतु पुराने नियम में ऐसी अनेक विधियां थी, उनमें से एक थी चिट्ठियां डालना जो नए नियम में भी प्रचलित थी। यहूदा इस्करियोती मर गया, तब पत्रस ने भी चिट्ठियों द्वारा बरनबास और मतिया में से एक को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुनने के लिए चिट्ठियां डाली थी, परंतु ध्यान दीजिए कि ये सब पवित्र आत्मा के उतरने से पहले होता था। जब पवित्र आत्मा कलीसिया की अगुवाई करने लगा तब परमेश्वर की इच्छा वही प्रकट करता है। पौलुस लिखता है कि पवित्र आत्मा को ये उचित लगा, जब हम एशिया जाना चाहते थे तब पवित्र आत्मा ने हमें मना किया। पवित्र आत्मा ने कहा, पौलुस और बरनबास मेरे इस काम के लिए अलग कर दो जिसे करने के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। अब जब पवित्र आत्मा स्वयं ही स्पष्ट निर्देश दे रहा था तब परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए किसी अन्य विधि या चिट्ठियां डालने की आवश्यकता ही नहीं रही थी। भूमध्य सागर में यात्रा करते समय जब जहाज तूफान में फंस गया तब पौलुस ने सब यात्रियों से कहा, भाइयों, रात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझसे कहा है कि जहाज तो निश्चय ही टूटेगा परंतु किसी की जान को हानि न होगी। ऐसे में चिट्ठियां डालने की क्या आवश्यकता। अतः मैं आत्मा के इस युग में चिट्ठियों या शर्तों के बारे में नहीं जानता। बहुत से लोग विधि को अपनाते हैं परंतु मैं तो पवित्र आत्मा के निर्देश को खोजता हूं और वो एक उत्तम विधि है परंतु सबके अपने अपने तरीके हैं। जब तक प्रभु का काम हो रहा है तब तक वे ठीक है। परमेश्वर से संबंध बनाने के हमारे अपने तरीके हैं परंतु ध्यान दें कि परमेश्वर तरीकों में बांधा नहीं जाता और मुझे उसके विविध तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। इस प्रकार गिदोन ने ऊन का प्रयोग करके परमेश्वर की इच्छा जानी थी। मैं नहीं जानता कि आप भी ऐसे ही करेंगे। आवश्यकता तो इस बात की है कि आप प्रार्थना करें।